का था, रूह वही रूप नया।
शोलागढ़ एट 34 किलोमीटर के पिछले भाग में आपने सुना कि श्रेया और सार्जेंट सलीम गुफा से रास्ता ढूंढकर बाहर तो आ गए, लेकिन एक दूसरी गुफा में फंस गए। वहीं दूसरी तरफ विक्रम के बंगले पर गोली चलाने वाला कौन था? क्या हुआ उस न्यूड पेंटिंग का? क्या सार्जेंट सलीम और श्रेया उस गुफा से बचकर बाहर निकल सके? जानने के लिए सुनिए शोलागढ़ एट 34 किलोमीटर का ये भाग। सुहराब के सवाल पर विक्रम खान सोच में डूब गया, जैसे विक्रम किसी और दुनिया में गुम हो गया हो। सुहराब उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को बहुत ध्यान से देख रहा था। जब विक्रम ने जवाब नहीं दिया तो सुहराब ने फिर से सवाल दोहरा दिया,
मैंने पूछा था कि कौन है जो आपको डराना चाहता है।
सुहराब की आवाज सुनकर विक्रम चौंक पड़ा। वो कुछ घबराया हुआ सा दिख रहा था। उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा, ये मैं नहीं जानता कि कौन है। विक्रम को ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज कहीं बहुत दूर से आ रही है।
मतलब?
सोहराब ने विक्रम के चेहरे पर नजर गड़ाए हुए पूछा। मैं आपको पूरी बात बताता हूं, विक्रम ने कहा। इसके बाद वो खामोश हो गया, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। सोहराब ने उसे दोबारा टोका नहीं, वो उसके बोलने का इंतजार करता रहा। उसकी आंखें अभी भी विक्रम के चेहरे पर टिकी हुई थी। विक्रम सामने उन्हीं पेड़ों की तरफ देख रहा था जिधर से उस पर कुछ देर पहले गोली चलाई गई थी। कुछ देर बाद उसने बीती रात जुआ खाने में उसके साथ घटी पूरी घटना का बयान कर दिया। विक्रम बाउंसर के कत्ल वाली बात गोल कर गया, साथ ही विदेशी के वीडियो दिखाने वाली बात भी। बीती रात जुआ खाने में बाउंसर का कत्ल तो किसी और ने किया था, लेकिन उस विदेशी ने जो वीडियो में दिखाया था उसमें बाउंसर हत्यारे के तौर पर विक्रम का नाम ले रहा था। यही वजह थी कि विक्रम खान ने घटना सुनाते हुए पूरा हिस्सा ही एडिट कर दिया था।
आप कुछ छुपा रहे हैं?
सोहराब ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। उसके होठों पर मुस्कान थी।
नहीं, मैंने सब कुछ बता दिया है, विक्रम खान ने आवाज में विश्वास पैदा करते हुए कहा।
मिस्टर विक्रम, उस रात जुआ खाने में मैं भी मौजूद था। उस बाउंसर का कत्ल मेरी आंखों के सामने हुआ था। उसके बाद अचानक लाइट चली गई थी। लाइट आने के बाद आप कहीं नहीं दिखे। यही नहीं, बाउंसर की लाश भी गायब थी,
सुहराब ने कहा।
बहरहाल आप घबराइए नहीं, वो कत्ल फर्जी था। बाउंसर को रात में ही पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है।
ओह,
विक्रम की आंखें फैल गईं। लेकिन आप मुझे वहां तो दिखे नहीं, विक्रम की आवाज में आश्चर्य था।
मैं आपकी टेबल पर ही मौजूद था। दरअसल मैं उस वक्त मेकअप में था। चलिए आप पूरी बात शुरू से बताइए।
विक्रम खान सुहराब को बहुत ध्यान से देख रहा था, जैसे उसे उसकी बात पर यकीन ही ना हुआ हो। वो सकते के आलम में कुछ देर तक यूं ही सुहराब को देखता रहा। उसके बाद उसने पूरी बात शुरू से आखिर तक बयान कर दी। सुहराब उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनता रहा। उसके बाद उसने कहा,
उस पेंटिंग में ऐसी क्या खूबी है जिसके लिए इस कदर ड्रामा रचा गया और बकौल आपके आपको भयभीत करने की भी कोशिश की जा रही है?
क्या कह सकता हूं, विक्रम ने फिक्रमंद लहजे में कहा।
जिस रास्ते आपको ले जाया गया, क्या उस रास्ते को आप पहचान सकते हैं?
बहुत मुश्किल है, क्योंकि जाते वक्त मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। दूसरी बात, रात को अंधेरा होने की वजह से आसपास कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। लौटते वक्त वो रास्ता दूसरा था। उन लड़कियों ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, लेकिन इसका एहसास हो रहा था कि रास्ता पहले जैसा नहीं था।
इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें मकान के पिछले हिस्से से अंदर ले जाया गया,
कुमार सोहराब ने सोचते हुए कहा।
वो कोई बड़ी इमारत है जिसमें लिफ्ट से कार ऊपर तक ले जाई जा सकती है। ऐसी बड़ी इमारत पहाड़ियों के बीच बना पाना संभव नहीं है। आपको कोई भ्रम हुआ है?
हो सकता है, रात के अंधेरे में ऐसे भी दूर तक देखना मुमकिन नहीं था, विक्रम ने सफाई दी।
सुहराब उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। विक्रम की बात खत्म होने के बाद उसने पूछा,
उस विदेशी और उन लड़कियों को तो पहचान सकते हो ना?
जी बिल्कुल।
वैसे मैं भी उस न्यूड पेंटिंग के सिलसिले में ही आपके पास आया था। कुछ देर पहले तक मेरी नजर में उस पेंटिंग की खास अहमियत नहीं थी, लेकिन अब मेरी भी दिलचस्पी उसमें बढ़ गई है।
मैं आपकी बात नहीं समझा।
आपको हाशना ने जो पेंटिंग दी थी, मैं उसे लेने आया हूं, सोहराब ने कहा।
माफ कीजिएगा, लेकिन मैं वो पेंटिंग किसी को भी नहीं दे सकता, विक्रम खान ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा।
लेकिन आपने अगर किसी की कोई चीज ली है तो उसे लौटाना भी चाहिए, सोहराब ने मुस्कुराते हुए कहा।
क्या ये केस भी आपके पास आ गया है? विक्रम खान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट में व्यंग्य था।
नहीं, हाशना मुझसे कुछ दिन पहले मिली थी। वो चाहती है कि आप उसकी पेंटिंग वापस कर दें। उसने इस मामले में मुझसे मदद मांगी है,
सोहराब ने उसे पूरी बात साफ साफ बता दी। मैं वो पेंटिंग किसी कीमत पर नहीं दे सकता, चाहे मेरी जान ही चली जाए। विक्रम की आवाज थोड़ी ऊंची थी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी।
क्या वो इतनी ही महंगी है?
महंगी नहीं, कीमती है। उसकी कीमत मैं ही समझ सकता हूं, या फिर कोई एक और शख्स, विक्रम खान ने परेशानी से पहलू बदलते हुए कहा।
क्या मैं वो पेंटिंग देख सकता हूं?
कुमार सोहराब ने इच्छा जाहिर की। नहीं, विक्रम ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया।
इट्स ओके।
कुछ देर की खामोशी के बाद सोहराब ने दोबारा कहा,
फिलहाल मेरा उस पेंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप हाशना को उसे वापस कर देते तो मेरी बात का भ्रम रह जाता।
मेरी कुछ मजबूरी है सर, इस बार विक्रम की आवाज में इल्तिजा थी। फिर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद विक्रम ने कहा,
मुझे शक है कि उसी विदेशी ने पेंटिंग के लिए मुझे भयभीत करने की कोशिश की है, ताकि वो पेंटिंग में डर कर उसके आदमी को सौंप दूं।
जवाब में सोहराब ने कुछ नहीं कहा। उसने जेब से सिगार केस निकाल लिया, उसमें से एक सिगार निकाल कर उसका कोना तोड़ने लगा। सोहराब साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शाम को उस विदेशी का आदमी मुझसे पेंटिंग लेने आए और आप उसे गिरफ्तार कर लें?
विक्रम साहब, हमारे काम करने का तरीका पुलिस से अलग होता है।
मैं आपकी बात नहीं समझा।
हम उसे किस केस में गिरफ्तार करेंगे? दूसरी बात, ये कैसे साबित होगा कि वो उस विदेशी का आदमी है? तीसरी सबसे अहम बात ये कि हम सिर्फ प्यादे को गिरफ्तार करके पूरे गैंग को सतर्क नहीं कर सकते,
सोहराब ने सिगार जलाते हुए कहा।
इसके अलावा अभी तो ये भी नहीं पता कि उस पेंटिंग के पीछे वाकई में कोई गैंग सक्रिय है। दूसरी बात, उस पेंटिंग में ऐसी क्या खास बात है कि हर कोई उसे पाना चाहता है?
मुझे क्या करना चाहिए? आज शाम उस विदेशी का कोई आदमी पेंटिंग लेने आने वाला है। ये गोली उसी के धमकी के तौर पर मुझ पर चलाई गई है।
मैं क्या बता सकता हूं, ये आप फैसला कीजिए, क्योंकि आप पहले ही किसी से ली हुई चीज वापस नहीं करना चाहते,
सोहराब ने कहा और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। विक्रम भी उसके साथ ही उठ गया। उसने सोहराब की तरफ हाथ बढ़ाया। सोहराब ने विक्रम से हाथ मिलाते हुए कहा,
घर से निकलते वक्त एहतियात बरतिएगा। अगर आपकी बात सच है तो आप पर फिर हमला हो सकता है। आप चाहें तो हम आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम कर सकते हैं।
नहीं शुक्रिया, जरूरत होगी तो बता दूंगा, विक्रम ने कहा। विक्रम सोहराब को गेट तक छोड़ने आया था। सोहराब गोस्ट पर सवार हो गया। स्टार्ट होते ही गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने के बाद सोहराब ने गोस्ट को सड़क के किनारे रोक दिया। उसके बाद उसने इंस्पेक्टर मनीष को फोन मिलाया। फोन कनेक्ट होते ही उसने मनीष को दो सादा वर्दी कांस्टेबल विक्रम खान के घर की निगरानी पर लगाने को कहा। उसे यह भी हिदायत दे दी कि घर पर दूर से ही नजर रखी जाए। सिपाही तब तक किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक कि कोई गैर कानूनी बात ना हो। उसने मनीष को शाम को रिपोर्ट करने को भी कहा। इसके साथ ही सोहराब ने फोन काट दिया। उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक पर्चा निकाला और उसे ध्यान से देखने लगा। उसके बाद पर्चे को तह करके जेब में रख लिया। सोहराब ने गोस्ट स्टार्ट की और वो एक झटके में आगे बढ़ गई। इस इलाके में ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए गोस्ट की रफ्तार तेज थी। कुछ दूर जाने के बाद सुहराम ने बैक ग्लास को एडजस्ट किया और पीछे देखने लगा। कुछ देर बाद ही उसे एहसास हो गया था कि उसका पीछा किया जा रहा है। वो घर जाना चाहता था, लेकिन फिर वो बेवजह इधर उधर घूमता रहा। एक रेड लाइट पर पीछा करने वाली कार को डॉज देने में वो कामयाब हो गया और तेजी से गोस्ट को आगे बढ़ा ले गया। कुछ देर बाद उसकी कार 7 Dark Street स्थित कोठी गुलमोहर विला में दाखिल हो रही थी। उसने कार गैरेज में पार्क कर दी, नौकर को कॉफी के लिए फोन पर ही हुक्म दिया और मेकअप रूम में घुस गया। साजन सलीम बड़ी फुर्ती से उठा था। उसने श्रेया का हाथ पकड़कर उसे भी उठा दिया। श्रेया की आवाज से उसने समझ लिया था वो कहां और कितनी दूर बैठी है। साजन सलीम रुककर अंदाजा लगाने लगा कि ताजी हवा किस तरफ से आ रही है। कुछ देर की कोशिश के बाद उसने समझ लिया और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसने श्रेया का हाथ पकड़ रखा था और उससे थोड़ा आगे चल रहा था। दोनों फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वो दोनों काफी देर तक अंधेरे में चलते रहे। गुफा का ये रास्ता काफी चौड़ा था, लेकिन रास्ता उबड़ खाबड़ था। उन्हें कुछ दूर पर रोशनी दिखाई दी। रोशनी देखकर श्रेया खुशी से चीख पड़ी, हमने रास्ता तलाश कर लिया, देखो सुबह का उजाला दिख रहा है। ये उजाला नहीं बुद्धू, जुगनू है, सलीम ने कहा। तुरंत ही सर्जन सलीम की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ओह, जुगनुओं का झुंड, इसका मतलब है कि आगे बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर है। श्रेया तेजी से चलने लगी। सलीम ने उसे तुरंत ही टोकते हुए कहा, धीरे चलो वरना ठोकर लगेगी। कुछ देर बाद ही दोनों जुगनुओं के उस झुंड के करीब पहुंच गए। गुफा की छत से कई हजार जुगनू चिपके हुए थे। उनकी वजह से गुफा का आसपास का पूरा हिस्सा ही जगमगा रहा था। दोनों रुककर जुगनुओं के झुंड को देखने लगे। ये प्यार कर रहे हैं, सर्जन सलीम ने उन्हें उसी तरह ध्यान से देखते हुए कहा। मतलब, श्रेया ने पूछा। मतलब ये इनके अंडे देने की ऋतु है और ये जोड़े बना रहे हैं। ध्यान से देखो, इनमें कई सारे जुगनू ज्यादा चमक रहे हैं, वो नर जुगनू हैं, और जो कम चमक रहे हैं वो मादा हैं। मैं अब भी नहीं समझी, मादा जुगनुओं को आकर्षित करने के लिए नर ज्यादा चमकते हैं। ओहो, ये बात तो है, श्रेया ने ध्यान से देखते हुए कहा। सलीम ने गुफा की छत पर वो जगह तलाशनी शुरू की जहां से ये जुगनू अंदर आए थे। उसे पास ही एक छेद नजर आ गया। वो छेद इतना बड़ा नहीं था कि उससे बाहर निकला जा सके। श्रेया ने भी वो छेद देख लिया था। छोटे से होल को देखकर उसके चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए थे। आओ चलें, सर्जन सलीम ने उसके चेहरे पर नाउम्मीदी के भाव पढ़ लिए थे। उसने कहा, उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। दोनों फिर आगे बढ़ गए। रोशनी की वजह से उनकी रफ्तार थोड़ी तेज थी। कुछ आगे जाते ही उन्हें पानी का एक सोता मिल गया। पानी तेजी से नीचे की तरफ बह रहा था। सर्जन सलीम ने रुककर अपनी प्यास बुझाई। उसे पानी पीते देखकर श्रेया ने भी चुल्लू से पानी पिया और उसने मुंह हाथ भी धो डाले। दोनों बहते पानी में ही चल रहे थे। पानी धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। अचानक श्रेया की भयानक चीख से पूरी गुफा गूंज गई। सुहराब ने मेकअप रूम में ही कॉफी पी और फिर एक किताब पढ़ने लगा। यह किताब स्पेन के प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो की प्रेमिका रही सिल्वेट डेविट के बारे में थी। ये वही किताब थी जिसे कुछ दिन पहले उसने श्रेयाली के प्रेमी पेंटर विक्रम के खान के हाथों में देखा था। सुहराब तकरीबन 4 घंटे तक उस किताब को पढ़ता रहा। उसके बाद वो आराम कुर्सी पर ही सो गया। 2 घंटे की नींद के बाद वो उठा और वहां से सीधे अपने बेडरूम में आया और फिर वॉशरूम में नहाने के लिए चला गया। शावर लेने के बाद गाउन पहना और फिर वापस मेकअप रूम में आ गया। आधे घंटे के मेकअप के बाद इंस्पेक्टर सोहराब ने खुद को एक मजदूर के गेटअप में ढाल लिया था। अभी भी कुछ काम बचा था। उसने नारियल के तेल में जिंक पाउडर घोला और उनसे बालों की कुछ लटें सफेद कर डाली। अब वो कुछ उम्र दराज सा लगने लगा था। एक डब्बे को खोलकर उसमें से बड़ा सा मस्सा उठाकर बाएं गाल के ऊपर चिपका लिया। इस काले मस्से में एक बाल भी निकला हुआ था। अब उसका हुलिया एकदम बदल गया था। मेकअप रूम के वार्डरोब से उसने काफी पुराने और साफ कपड़े निकाले और उसे पहन लिया। रिवॉल्वर पैंट की दाहिनी जेब में डाल ली।
कुछ गोलियां बाई जेब में रखी।
गोलियों के ऊपर बीड़ी का बंडल और एक माचिस भी रख ली। बाएं हाथ की बीच वाली उंगली में लोहे का एक छल्ला डाल लिया। एक ड्रॉर खोलकर पुराना फीचर मोबाइल निकाला और उसमें स्मार्टफोन का सिम निकाल कर डाल लिया। इसके बाद फोन ऑन करके जेब के हवाले कर दिया। पैरों में पुरानी सैंडल डालकर एक कुर्सी पर बैठकर सिगार सुलगा ली। सिगार खत्म करते ही वो कोठी से बाहर आ गया। कोठी से मेन रोड तक का लंबा सफर तय करते हुए वो गेट से बाहर निकल आया और पैदल ही एक तरफ चल दिया। कोठी से तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल चलते हुए वो टैक्सी स्टैंड पर पहुंचा और एक टैक्सी वाले से शोलागढ़ चलने को कहा। साहब वहीं रुक जाएं या वापस आएं, लेकिन किराया तो दोनों तरफ का ही लगेगा क्योंकि वहां से खाली वापस आना पड़ेगा, टैक्सी ड्राइवर ने कहा।
मुझे मालूम है,
सोराब ने संक्षिप्त उत्तर दिया और टैक्सी के पीछे का दरवाजा खोलकर बैठ गया। टैक्सी रवाना हो गई। इस वक्त रात के 8 बजे थे। शोलागढ़ यहां से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर था। सोहराब को उम्मीद थी कि वो 6 से 7 घंटों में वहां आसानी से पहुंच जाएगा। शेयाली की चीख सुनकर सलीम तेजी से उसकी तरफ पलटा। चीख क्यों रही हो?
मेरे पैर में किसी चीज ने काट लिया है,
श्रेया ने कहा। रुको मैं देखता हूं। सलीम उसका पैर पानी से निकालकर अंधेरे में टटोल कर चेक करने लगा। पैर में एक बड़ी सी जोंक चिपकी हुई थी। सलीम ने जोंक पर जोर की चिकोटी काटी और उसने श्रेया का पैर छोड़ दिया। सलीम ने उसे पीछे रास्ते पर फेंक दिया। अगर ज्यादा देर हो जाती तो जोंक तुम्हारी खाल के साथ ही बाहर निकलती। अब कुछ देर तुम्हें दर्द होगा, अभी चलो अब आगे बढ़ते हैं।
तुम बहुत अच्छे हो, अगर तुम नहीं होते तो मैं इस गुफा में मर ही जाती, या फिर वो जंगली मुझे मार देते,
श्रेया ने जज्बाती होते हुए कहा। उसकी आंखें नम हो गई थीं। गुफा के अंदर बह रही उस उथली नदी में दोनों आधे घंटे से ज्यादा यूं ही चलते रहे। कभी कभी पानी कमर तक आ जाता तो श्रेया की चीख निकल जाती। सलीम को इस बात का अंदाजा था कि आगे कहीं ना कहीं रास्ता जरूर होगा जहां से ये सोता बाहर निकला होगा। इस उम्मीद की एक वजह यह भी थी कि उन्हें सांस लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वैसे भी वो हार मानने वालों में से नहीं था। अब पानी की रफ्तार तेज हो गई थी, यानी आगे ढलान थी। सलीम पथरीली दीवार पर हाथ जमा कर चल रहा था ताकि फिसलने ना पाए। उसके पैरों में स्पोर्ट शूज अभी भी थे, जंगलियों ने जूतों को बख्श दिया था। जूतों के तले में मजबूत ग्रिप थी। श्रेया ने सलीम के शाने को मजबूती से पकड़ लिया। उसे डर लग रहा था, साथ ही ये यकीन भी था कि सलीम सब संभाल लेगा। अब तक उसने यही महसूस किया था। सलीम का अंदाजा सही निकला। वो अब पहाड़ी गुफा के मुहाने पर खड़े थे। रात का अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। सलीम को इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ था कि उसने रात के बाद एक पूरा दिन गुफा से बाहर आने की कोशिश में गुजार दिया है। वो समझ रहा था कि ये वही रात है जब वो गुफा के अंदर फंसा था। हकीकत में ये दूसरी रात थी। चांदनी रात होने की वजह से सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। चांद नीचे उतर रहा था। ऐसा लगता था कि वो भी थक गया है। सलीम और श्रेया जहां पर खड़े थे उसके नीचे नदी बह रही थी। ऊपर का पानी भी उसी में गिर रहा था। नदी का कल कल करता शोर उन्हें साफ सुनाई दे रहा था। वो दोनों उस नदी से तकरीबन 10 फीट की ऊंचाई पर थे। ठंडी हवा सलीम को काफी भली लगी। उसने कई लंबी लंबी सांसें ली। इससे उसे ताजगी का एहसास हुआ और शरीर में नई जान आ गई, वरना सारा बदन थक कर चूर हो रहा था। मौजूदा हालात सलीम के लिए परेशान कुन थे। उसका दिल कह रहा था कि वो उन्हीं जंगलियों के पास वापस लौट जाए। किसी दिन मुनासिब मौका देखकर वहां से श्रेयाली और श्रेया को लेकर निकल जाए। दिमाग कहता था कि वो इतने घने जंगल में उन दोनों को लेकर जाएगा कहां। जंगली तो उसे लगातार निगरानी में रख रहे थे। उसने आसपास का इलाका भी नहीं देखा था। उसने दिमाग की सुनी और आगे बढ़ते जाने का फैसला किया। वो श्रेयाली को जंगल से अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन सब कुछ उलट पुलट गया था। अब उसकी कोशिश थी कि वो इस पूरे इलाके को समझ सके ताकि सोहराब के साथ वापस लौटकर श्याली को जंगलियों से आजाद करवा सके। उसे इस बात की खुशी थी कि श्याली जिंदा थी। अगर वो उसे अपने साथ ले जा पाता तो सुहराब बहुत खुश होता। अलबत्ता उसे इस बात का सुकून था कि वो श्रेया को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा सकेगा। तफरीह के चक्कर में उसी ने श्रेया को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। श्रेया उसे पकड़े खड़ी थी और आसपास की सभी चीजों को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब सलीम क्या करेगा। वो कुछ देर यूं ही खड़ी रही, फिर उसने पूछ ही लिया, अब क्या करना है? सलीम ने नीचे देखते हुए संक्षिप्त उत्तर दिया, देखते हैं। नीचे बहती नदी और ठंडी हवा, सब कुछ काफी पुरसुकून था। हालांकि सलीम को सुकून नहीं था क्योंकि अभी परेशानी खत्म नहीं हुई थी। सलीम ने चांदनी के धुंधलके में आसपास का जायजा लिया, लेकिन नीचे जाने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया। गुफा के मुहाने के आसपास की दरारों में कुछ पेड़ जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन उनसे भी कोई मदद मिलने वाली नहीं थी। सलीम कुछ देर यूं ही खड़ा नीचे देखता रहा। इसके बाद उसने नदी में कूदने का फैसला कर लिया। ये फैसला खतरनाक भी हो सकता था, क्योंकि अगर पानी ज्यादा गहरा न हुआ तो हाथ पैर टूट सकते थे। वो कुछ देर सोचता रहा। एक मौका था कि वो दिन निकलने का इंतजार करता और फिर रास्ता तलाशता। उसे ये फैसला सही नहीं लगा। सुबह होते ही जंगलियों से तलाशना शुरू करेंगे। फिलहाल वो जंगलियों के साथ टकराव को टालना चाहता था। वो रात ही रात में यहां से दूर निकल जाना चाहता था। यही वजह थी कि उसने नदी में कूदने का फैसला ले लिया था। रिस्क उठाना ही था। क्या कोई हेलीकॉप्टर हमें लेने आने वाला है? श्रेया ने हंसते हुए पूछा। नहीं, हमें छलांग लगानी है नदी में। पहले मैं कूदूंगा और उसके बाद तुम। डरना नहीं, कूद ही जाना, मैं नीचे तुम्हें संभाल लूंगा, सलीम ने उसे समझाते हुए कहा। मैं नहीं कूदूंगी, मुझे डर लग रहा है, श्रेया ने उसके हाथों को जोर से पकड़ते हुए कहा। डरो नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। हमें रात में ही यहां से दूर निकलना होगा। जंगली सुबह होते ही मुझे तलाशेंगे, सलीम ने उसे समझाते हुए कहा। ओके, ठीक है, श्रेया ने नदी को देखते हुए कहा। मैं कूदने जा रहा हूं, मैं नीचे से तुम्हें हाथ दिखाऊंगा, उसके बाद तुम कूद जाना, सलीम ने कहा। ओके, श्रेया ने जवाब में कहा। इसके बाद सलीम ने नीचे छलांग लगा दी। इंस्पेक्टर सोहराब के जाने के बाद विक्रम खान फिर शराब पीने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पेंटिंग के मामले में उसे क्या करना चाहिए। वो पेंटिंग को किसी भी कीमत पर अपने पास ही रखना चाहता था। उसने फिलहाल हाशना से तो छुटकारा पा लिया था, लेकिन अब एक विदेशी उस पेंटिंग को हासिल करना चाहता था। उसे सोहराब से इस मामले में कोई मदद नहीं मिली थी। विक्रम फिर से बैठकर शराब पीने लगा। वो काफी बेचैन था। दो पैग पीने के बाद वो उठकर अपने बेडरूम में चला गया। वहां उसने एक बड़ी सी अलमारी खोलकर एक बड़ा सा खास तरह का बैग निकाला। बैग को उसने बेड पर रख दिया और उसकी जिप खोल दी। उसमें से विक्रम ने एक पेंटिंग निकाली। वो मुलायम कपड़े में लिपटी हुई थी। कपड़ा हटाकर वो पेंटिंग को ध्यान से देखने लगा। ये वही न्यूड पेंटिंग थी जिसे हाशना ने उसे देखने को दिया था। पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी। इसमें एक विदेशी महिला बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। उसके लंबे सुनहरे बाल उसके सीने पर बिखरे थे। पेंटिंग इतनी जीवंत थी कि ऐसा लगता था कि अभी वो महिला उठ बैठेगी। विक्रम कुछ देर तक उस पेंटिंग को देखता रहा। उसके बाद उसने फिर से उसे पैक कर दिया। बैग को उठाकर वो बेडरूम की दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया। वहां उसने वार्डरोब खोला और फिर वार्डरोब का पूरा बैग हाथों से सरका दिया। अब वहां एक दरवाजा नजर आने लगा था। दरवाजे से लगी सीढ़ियां नीचे तक जाती थी। अंदर एक हल्का सा बल्ब जल रहा था। विक्रम पेंटिंग वाला बैग लेकर सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे एक बड़ा सा हॉल था। वहां एक छोटा सा बार भी था। वहां कई तरह की शराब की बोतलें रखी नजर आ रही थी। एक तरफ सोडा पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ दो बेड रखे थे। डाइनिंग टेबल भी एक तरफ रखी हुई थी, यानी यहां भी रहने का पूरा इंतजाम था। नीचे पहुंचने के बाद विक्रम ने स्विच से तेज लाइट जला दी। उसने एक तरफ रखी अलमारी को चाबी से खोल लिया। बैग को उसने अलमारी में रख कर फिर से ताला लगा दिया। उसके बाद लाइट ऑफ करके वो सीढ़ियों से फिर बेडरूम में लौट आया। वार्डरोब को फिर पहले जैसी स्थिति में कर दिया। अब उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे। विक्रम ड्राइंग रूम में लौट आया और फिर से शराब पीने लगा। कुछ देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने झटके से दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा उसे घूर रहा था। इंस्पेक्टर सोहराब शोलागढ़ क्यों जा रहा था? क्या सार्जेंट सलीम और श्रेया नदी से जिंदा निकल सके? विक्रम के घर में आने वाला वो शख्स कौन था? इन सवालों के जवाब पाने के लिए सुनिए जासूसी उपन्यास शोलागढ़ 34 किलोमीटर का अगला भाग सिर्फ गाथा पर।